नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी कर रही है। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के 11 दिव्यांग विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में शामिल हुए। राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और नई दिल्ली में आयोजित 3 दिन के विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत ने कुल 208 पदक अपने नाम किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही वहां चल रहे सड़क और निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके अंतर्गत उन्होंने हैदरपुर मेन रोड पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के रीमॉडलिंग कार्य का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना से बरसात के समय जलभराव की समस्या में कमी आएगी और क्षेत्र की सड़कों और आसपास के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग के सिंगलपुर लेबर चौक पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण और ड्रेनेज सुधार कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और स्थानीय निवासियों तथा यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय निवासियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज भारत अगली पीढ़ी के सुधार, स्टार्टअप्स, पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल बुनियादी ढांचा और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक परिवर्तन की धुरी बनता जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम में चल रहे एक निजी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल विकास का लक्ष्य नहीं बल्कि तकनीक, नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और मानव केंद्रित शासन पर आधारित एक नए युग की परिकल्पना है।
यहाँ जो डेवलपमेंट है वो पीपल ड्रिवन डेवलपमेंट है। आज टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड हमारी हर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर सर्विस सेक्टर है और लगातार उस पे भारत काम कर रहा है। जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात होती है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम सब टारगेट करते हैं। भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो मुकाम हासिल किया, जिस देश को दुनिया डेवलपिंग कंट्री के नाते जान थी, आज हम डेवलप्ड कंट्री के मुकाम पर पहुंचे हैं।
इस वर्ष पहली बार दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के 11 दिव्यांग विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान 2 छात्रों ने नृत्य प्रस्तुति दी जबकि 9 विद्यार्थी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अमृत उद्यान का भ्रमण भी किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट निगम विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास डागर तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। दिल्ली नगर निगम ने बताया कि वो अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों, विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों को हर संभव सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे शिक्षा और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से अपने कौशल का विकास कर सकें। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज निगम के पश्चिमी जोन में एक व्यावसायिक भवन को सील कर दिया। ये 4 मंजिला परिसर नजफगढ़ नांगलोई मुख्य मार्ग पर बाप रोला में स्थित है। पश्चिमी जोन संयुक्त कर निर्धारक और समाहर्ता रंजन कुमार ने बताया कि संबंधित संपत्ति पर पिछले कई वर्षों का लगभग 22 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संपत्ति मालिक को कई बार सूचित करने के पश्चात भी करदाता ने संपत्ति कर अदा नहीं किया। तत्पश्चात विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज संपत्ति को सील कर दिया है। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि संपत्ति कर नियमों के सख्त अनुपालन के लिए सभी करदाताओं से अपील है कि वे समय रहते और सही तरीके से अपने बकाए का निपटान करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। दिल्ली परिवहन निगम DTC के माध्यम से दिल्ली की महिला निवासियों के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से महिलाओं को DTC बसों में निशुल्क यात्रा अधिक पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली के जरिए उपलब्ध होगी। ये पहल वन नेशन वन कार्ड की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है। निगम ने बताया कि दिल्ली की पात्र महिला निवासी DTC द्वारा स्थापित निर्धारित काउंटरों से ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं से अनुरोध किया गया है कि वे कार्ड लेने के लिए भीड़ ना लगाएं, क्योंकि इसका वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सभी पात्र महिलाओं को सुविधाजनक रूप से कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कल से शुरू हुए हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 22 मार्च तक किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हंगरी को केंद्र में रखा गया है, इसलिए महोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्में हंगेरियन सिनेमा पर आधारित होंगी। इस वर्ष के महोत्सव में 18 देशों की 67 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जो लगभग 20 भाषाओं में होंगी। ये फिल्म हंगरी और भारत के बीच एक प्रतीकात्मक सांस्कृतिक सेतु का काम करेगी। इस महोत्सव में कई मशहूर हंगेरियन निर्देशकों की अवार्ड जीतने वाली फिल्में भी दिखाई जाएंगी। नई दिल्ली में कल जनजातीय कला महोत्सव 2026 का समापन हो गया। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री जुवेल ओराम और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहे। श्री जुवेल ओराम ने कहा कि भारत के जनजातीय समुदायों के पास कला, संस्कृति, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का असाधारण भंडार है। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कला महोत्सव जैसी पहल कलाकारों की रचनात्मकता को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए विशेष आरक्षित रेलगाड़ी के संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए लिया गया है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 04081 अब 17 मार्च से 30 मार्च तक 14 फेरे के साथ विस्तारित अवधि के लिए चलेगी। इसी प्रकार श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 04082 अब 18 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया है। रिफाइनरियों में घरेलू LPG उत्पादन में 30% से अधिक की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को व्यावसायिक LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।
नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में PNG डोमेस्टिक सप्लाई और CNG को बिना किसी कट के PNG सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है।
भारत पेट्रोलियम ने देश भर में निर्बाध और विश्वसनीय LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी का मजबूत वितरक नेटवर्क निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, जिससे घरेलू रसोई के लिए गैस की कमी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा कि ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के सिलेंडर मिलता रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्ष 2015 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज दो लोगों को एवेन्यू रोड से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल और 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली में खेल महाकुंभ के अंतर्गत वॉलीबॉल प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन आज जनकपुरी के एक स्कूल में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के खेल मंत्री आशीष सूद ने फाइनल में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली खेल महाकुंभ केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि दिल्ली के खिलाड़ियों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की एक पहल है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने के दौरान आयोजित इस खेल महाकुंभ में 23,000 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में भाग लेने का अवसर मिला है।
खेल महाकुंभ ने 22-23 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों को एक महीने तक अलग अलग खेलों में खेलने का अवसर दिया है। ये सब तैयारी है आने वाले ओलंपिक्स की और दिल्ली की टैली नेशनल गेम्स में भी बढ़े, उन सब के लिए हमारा काम है अपने खिलाड़ियों को अवसर देना, उनको ट्रेनिंग देना। इस खेल महाकुंभ से उसकी शुरुआत हुई है।
नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 में भारत का दबदबा रहा। 3 दिन तक चले इस प्रतियोगिता का समापन भारत ने कल 208 पदकों के साथ किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रतियोगिता में 8 देशों भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, चीन, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र के लगभग 257 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। रूस ने दूसरा जबकि बोस्निया और हर्जेगोविना ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन मुख्य आकर्षण 2 बार की पेरिस ओलंपिक पदक विजेता प्रीति पाल रही, जिन्होंने महिलाओं की 200 मीटर T35 T37 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने प्रतियोगिता के पिछले दोनों दिनों में अपना दबदबा बनाए रखा था। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के गोला फेंक F11, F12, F20 और F57 इवेंट में 3 पदक अपने नाम किए। भारत ने पुरुषों की 200 मीटर T37, T44 और 800 मीटर T53, T54 रेस में भी 3 पदक अपने नाम किए। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर ई अभियान के अंतर्गत करदाताओं को भेजे गए कुछ ईमेल संदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ करदाताओं को ऐसे ईमेल मिले हैं जिनमें महत्वपूर्ण लेनदेन के गलत विवरण दर्ज थे। ऐसे करदाताओं से पिछले ईमेल को अनदेखा करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने YouTube पर प्रसारित एक वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार पीएम लैपटॉप योजना 2026 के अंतर्गत सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि वीडियो में किया गया दावा फर्जी है। इकाई ने बताया है कि केंद्र सरकार वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि कल राष्ट्रीय राजधानी के लिए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली में थोड़ा बहुत बारिश यानी ड्रिजिल और थंडरस्टॉर्म का हम लोग फोरकास्ट किए हैं और स्ट्रॉन्ग विंड भी चल सकता है 30-40 गस्टिंग टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए कल दिल्ली में हम लोग जो है 15 तारीख को येलो अलर्ट दिया है थंडरस्टॉर्म और लाइट रेन के लिए। फिर दोबारा एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को इम्पैक्ट करेगा, तो 18 तारीख में दिल्ली में भी छुटपुट बारिश हो सकता है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी कर रही है। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के 11 दिव्यांग विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में शामिल हुए और नई दिल्ली में आयोजित 3 दिन के विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत ने कुल 208 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।